अध्ययन लेख 46। इस लेख का अध्ययन 19-25 जनवरी के दौरान किया जाएगा। विषय: यीशु हमदर्दी रखने वाला महायाजक। ये लेख इब्रानियों 4:15 पर आधारित है, जहां लिखा है, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमसे हमदर्दी ना रख सके। गीत 17। मैं चाहता हूं। क्या सीखेंगे? हम जानेंगे कि यीशु लोगों का दर्द समझता है और उनसे हमदर्दी रखता है, जिस वजह से वो सबसे अच्छा महायाजक बन पाया। हम ये भी जानेंगे कि वो आज किस तरह हमारी मदद कर रहा है। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल क: यहोवा ने अपने बेटे को धरती पर क्यों भेजा? सवाल ख: इस लेख में हम क्या जानेंगे? करीब 2000 साल पहले यहोवा परमेश्वर ने अपने सबसे प्यारे बेटे यीशु को धरती पर भेजा। क्यों? एक वजह यह थी कि वह इंसानों को पाप और मौत से छुड़ाना चाहता था और शैतान की वजह से जो नुकसान हुए हैं उन्हें ठीक करना चाहता था। पर यहोवा यह भी जानता था कि एक इंसान के तौर पर जीकर यीशु एक ऐसा महायाजक बन पाएगा जो लोगों का दर्द समझता है और उनसे हमदर्दी रखता है। ईस्वी सन 29 में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब से वह महायाजक के तौर पर सेवा करने लगा। इस लेख में हम जानेंगे कि धरती पर आने से किस तरह यीशु हमदर्दी रखने वाला महायाजक बन पाया। जब हम इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि महायाजक के नाते सेवा करने के लिए यीशु कैसे पूरी तरह परिपूर्ण या योग्य बना, तो हम बिना हिचकिचाए यहोवा से प्रार्थना कर पाएंगे, उस वक्त भी जब हम पाप या अपनी कमजोरियों की वजह से निराश हो जाते हैं। इब्रानियों 5:7-9 में लिखा है, जब मसीह इस धरती पर जिंदा था तो उसने ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से मिन्नतें और बिनतियां की थीं जो उसे मौत से बचा सकता था, और उसकी सुनी गई क्योंकि वह परमेश्वर का डर मानता था। परमेश्वर का बेटा होते हुए भी उसने कई दुख सहकर आज्ञा माननी सीखी, और परिपूर्ण किए जाने के बाद उसे यह जिम्मेदारी दी गई कि वो उन सबको हमेशा का उद्धार दिलाए जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर का प्यारा बेटा धरती पर आया। पैराग्राफ 3 और 4। सवाल: जब यीशु धरती पर आया तो उसकी जिंदगी में कौन से बड़े बड़े बदलाव हुए? आज हमारे हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमें अपना घर, अपना परिवार और अपने दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ सकता है, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। जब ऐसा होता है तो हालात का सामना करना आसान नहीं होता। जब यीशु धरती पर आया तो ये उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। ऐसा बदलाव कभी किसी के साथ नहीं हुआ। स्वर्ग में वो यहोवा का सबसे खास बेटा था और उसकी दाईं तरफ रहता था। भजन 16:11। हर वक्त उसे अपने पिता से प्यार मिलता था और वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि वो अपने पिता के साथ काम करता था। लेकिन जैसा फिलिप्पियों 2:7 में लिखा है, उसने खुशी खुशी अपना सब कुछ त्याग दिया। वो स्वर्ग में एक ऊंचा पद छोड़कर धरती पर आया और पापी इंसानों के साथ रहा। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब यीशु पैदा हुआ और जब वो छोटा था तो उस वक्त क्या हालात थे। उसके माता पिता इतने गरीब थे कि यीशु के पैदा होने के कुछ समय बाद जब वो बलिदान चढ़ाने गए तो वो फाख्ता या कबूतर का सिर्फ एक जोड़ा ही चढ़ा पाए। फिर जब राजा हेरोदेस को मसीहा के जन्म की खबर मिली तो उसने यीशु को मार डालने की कोशिश की। हेरोदेस से बचने के लिए यीशु के माता पिता उसे लेकर मिस्र भाग गए, जहां वो कुछ समय के लिए शरणार्थी के तौर पर रहे। सोचिए, यीशु के लिए कितना बड़ा बदलाव था। तब वो स्वर्ग में था और अब उसे पनाह लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा था। पैराग्राफ 5। सवाल: धरती पर यीशु ने क्या देखा और इस वजह से वो किस तरह हमदर्दी रखने वाला महायाजक बन पाया? धरती पर यीशु ने लोगों की तकलीफें देखी। उसने अपनों को खोने का गम भी सहा, जैसे शायद उसने अपने पिता यूसुफ को मरते हुए देखा था। अपनी सेवा के दौरान भी वो ऐसे कई लोगों से मिला जो बीमार थे, देख नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, और जिन्होंने अपने बच्चों को मौत में खोया था। उन्हें देखकर वो तड़प उठा। ये सच है कि जब यीशु स्वर्ग में था तब उसने लोगों की तकलीफें देखी थी, लेकिन अब वो लोगों की तकलीफ और भी करीब से देख पाया। वो इंसानों की भावनाएं, उनकी परेशानियां और उनका दर्द समझ पाया। इतना ही नहीं, उसने खुद भी उन भावनाओं को महसूस किया। जैसे कुछ मौकों पर वो परेशान हो उठा, बहुत थक गया और उसे गहरा दुख हुआ। पैराग्राफ 5 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि यीशु के आसपास बहुत से लोग उससे गुजारिश कर रहे हैं कि वो उन्हें ठीक कर दे। वो झुककर बड़े प्यार से एक बीमार बुजुर्ग आदमी के हाथ पकड़ रहा है। चित्र शीर्षक, यीशु लोगों से हमदर्दी रखता था और जो तकलीफ में थे उनकी परवाह करता था। यीशु ने लोगों का दर्द समझा। पैराग्राफ 6, सवाल, यशाया की भविष्यवाणी से कैसे पता चलता है कि मसीहा यानी यीशु लोगों से हमदर्दी रखता है और उनका दर्द समझता है? धरती पर अपनी सेवा के दौरान यीशु को उन लोगों से बहुत हमदर्दी थी जिन्हें समाज में नीची नजरों से देखा जाता था और सताया जाता था। ऐसा करके उसने यशाया की भविष्यवाणी को पूरा किया। इब्रानी शास्त्र में कभी कभी अमीर और ताकतवर लोगों की तुलना सींचे हुए बाग या बड़े बड़े पेड़ों से की गई है। वहीं गरीबों की और जिन्हें सताया जाता है उनकी तुलना कुचले हुए नरकट और टिमटिमाती बाती से की गई है। यशाया 42:3 में लिखा है, वो कुचले हुए नरकट को नहीं कुचलेगा, टिमटिमाती बाती को नहीं बुझाएगा, वो न्याय करने में विश्वास योग्य होगा। ये तुलना करके भविष्यवक्ता यशाया बता रहा था कि आने वाला मसीहा यानी यीशु उन लोगों का दर्द समझेगा और उनसे हमदर्दी रखेगा जिन्हें समाज में बिल्कुल गया गुजरा समझा जाता है। पैराग्राफ 7 और 8, सवाल, यीशु ने किस तरह यशाया की भविष्यवाणी पूरी की? मती ने बताया कि यीशु ने किस तरह यशाया की भविष्यवाणी पूरी की। उसने लिखा, वो कुचले हुए नरकट को नहीं कुचलेगा, ना ही टिमटिमाती बाती को बुझाएगा। यीशु ने उन लोगों के लिए भी चमत्कार किए जिन्हें लोग तुच्छ समझते थे और जो खुद को कुचले हुए नरकट की तरह महसूस करते थे। यही नहीं, उसने उन लोगों की भी मदद की जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, जो मानो टिमटिमाती बाती की तरह बुझने वाले थे। जैसे एक बार यीशु एक ऐसे आदमी से मिला जिसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वो आदमी ठीक होने और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की कभी सोच भी नहीं सकता था। एक और मौके पर यीशु एक बहरे आदमी से मिला जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। जरा सोचिए, जब वो आदमी लोगों को मजे से बातें करते हुए देखता होगा और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। पर अफसोस, ऐसे लोगों को एक और दुख झेलना पड़ता था। उस जमाने में बहुत से यहूदी मानते थे कि जिन्हें कोई बीमारी है या जो चल फिर नहीं सकते वो अपने या अपने माता पिता के पापों की सजा भुगत रहे हैं। इस गलत सोच की वजह से लोग उन बेचारों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और ये एहसास दिलाते थे कि वो किसी काम के नहीं है। लेकिन जैसा यशाया ने भविष्यवाणी की थी, यीशु ने उन्हें ठीक किया और उनकी तकलीफ दूर की। उसने उन्हें एहसास दिलाया कि यहोवा को उनकी बहुत परवाह है। इससे उन्हें जीने की उम्मीद मिली होगी। अब आइए देखें कि यीशु हमारे बारे में कैसा महसूस करता है। पैराग्राफ 9, सवाल, इब्रानियों 4:15 और 16 से कैसे पता चलता है कि हमारा महायाजक हम पापी इंसानों से हमदर्दी रखता है? इब्रानियों 4:15 और 16 में लिखा है, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमसे हमदर्दी न रख सके, मगर वो ऐसा है जो हमारी तरह सब बातों में परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम परमेश्वर की महाकृपा की राजगद्दी के सामने बेझिझक बोलने की हिम्मत के साथ जाएं, ताकि हम सही वक्त पर मदद पाने के लिए उसकी दया और महाकृपा पा सकें। हम यकीन रख सकते हैं कि यीशु हमारे साथ भी हमदर्दी रखता है। यहाँ जिस यूनानी शब्द का अनुवाद हमदर्दी किया गया है, उसका मतलब है किसी की तकलीफ देखकर तड़प उठना, उसका दर्द अपने दिल में महसूस करना। पौलुस ने इस यूनानी शब्द का इस्तेमाल इब्रानियों 10:34 में भी किया। यीशु ने जो चमत्कार किए उन किस्सों से पता चलता है कि लोगों को तकलीफ में देखकर उसने कैसा महसूस किया। उसने सिर्फ फर्ज समझकर लोगों को ठीक नहीं किया, उसे सच में लोगों की परवाह थी और वो दिल से उनकी मदद करना चाहता था। जैसे जब उसने कोड़ी को ठीक किया तो उसे दूर से भी ठीक कर सकता था, लेकिन वो उस कोड़ी के पास गया और उसने छूकर उसे ठीक किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदमी को कैसा लगा होगा? शायद बरसों बाद किसी ने उसे छुआ होगा। और ध्यान दीजिए कि यीशु ने उस आदमी को कैसे ठीक किया जो सुन नहीं सकता था। उसने उसका लिहाज किया, वो उसे भीड़ से दूर एक शांत जगह पर ले गया और वहां अकेले में उसे ठीक किया। अब उस औरत के बारे में भी सोचिए जिसने अपने पापों का पश्चाताप किया था। उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैर धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। फरीसी उसे नीची नजरों से देख रहे थे, लेकिन यीशु ने फरीसियों की सोच सुधारी और उस औरत के पक्ष में बोला। यीशु ने कभी पापी और बीमार लोगों को धुतकारा नहीं, इसके बजाय उसने उन्हें अपने पास बुलाया और वो उनके साथ बहुत प्यार से पेश आए। हम पूरा यकीन रख सकते हैं कि यीशु आज हमसे भी प्यार करता है और हमसे हमदर्दी रखता है। हम अपने महायाजक की तरह लोगों की मदद करते हैं। पैराग्राफ 10, सवाल, जो देख सुन नहीं सकते उनकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यीशु के चेले उसकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों से प्यार करते हैं, उनका दर्द महसूस करते हैं और उनसे हमदर्दी रखते हैं। यीशु की तरह हम चमत्कार करके लोगों को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहोवा के करीब आने में उनकी मदद जरूर करते हैं। जैसे यहोवा का संगठन 100 से भी ज्यादा साइन लैंग्वेज भाषाओं में बाइबल पर आधारित प्रकाशन तैयार करता है। जो देख नहीं सकते उनके लिए संगठन 60 से भी ज्यादा ब्रेल भाषाओं में किताबें निकालता है, और जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता उनके लिए 100 से भी ज्यादा भाषाओं में ऑडियो डिस्क्रिप्शन तैयार किए जाते हैं। ऑडियो डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि वीडियो में क्या सीन चल रहा है। ये सब करने की वजह से जो लोग देख सुन नहीं सकते वो भी यहोवा और उसके बेटे के करीब आ पाते हैं। पैराग्राफ 10 से जुड़ी पहली तस्वीर में दिखाया गया है कि राजघर में साइन लैंग्वेज मंडली की सभा चल रही है और भाई बहन इशारों में राजगीत गा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में एक बहन जो देख नहीं सकती ब्रेल भाषा में बाइबल पढ़ रही है। चित्र शीर्षक, बाइबल पर आधारित हमारी प्रकाशन 1000 से भी ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। बाईं तरफ 100 से भी ज्यादा साइन लैंग्वेज भाषाएं, दाईं तरफ 60 से भी ज्यादा ब्रेल भाषाएं। पैराग्राफ 11, सवाल, हम क्यों कह सकते हैं कि यहोवा का संगठन यीशु की तरह सब लोगों से हमदर्दी रखता है? यहोवा का संगठन बहुत मेहनत कर रहा है ताकि हर तरह के लोग यहोवा के करीब आ सकें। याद कीजिए कि यीशु के जिंदा होने के बाद उसने पिंतेकुस्त के दिन पवित्र शक्ति उंडेली थी ताकि जो लोग त्योहार के लिए आए थे वो सभी अपनी भाषा में खुशखबरी सुन सकें। प्रेषितों 2:5-7 में लिखा है, उस वक्त दुनिया के सभी देशों से आए यहूदी भक्त यरूशलेम में थे। जब ये आवाज सुनाई दी तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई और वो सब हैरान थे, क्योंकि हर किसी को चेलों के मुंह से अपनी ही भाषा सुनाई दे रही थी। लोग दंग रह गए और कहने लगे, कमाल हो गया, ये लोग जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलील के रहने वाले नहीं? और आयत 33 में लिखा है, उसे परमेश्वर के दाई तरफ ऊंचा पद दिया गया है और वादे के मुताबिक उसने पिता से पवित्र शक्ति पाई है। यही शक्ति उसने हम पर उंडेली है और इसी को तुम काम करते हुए देख और सुन रहे हो। यीशु की निगरानी में आज संगठन 1000 से भी ज्यादा भाषाओं में बाइबल पर आधारित प्रकाशन तैयार कर रहा है, उन भाषाओं में भी जिन्हें बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। जैसे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ऐसे कई भाषाएं अमेरिनियन भाषाएं हैं जिन्हें बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन इनमें से 160 से भी ज्यादा भाषाओं में हमारे प्रकाशन तैयार किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुशखबरी सुन सकें। इसके अलावा यूरोप में रहने वाले रोमा लोगों की बिरादरी में कई भाषाएं रोमानी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संगठन ने 20 से भी ज्यादा भाषाओं में उनके लिए प्रकाशन निकाले हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले हजारों लोगों ने सच्चाई अपनाई है और यहोवा की सेवा कर रहे हैं। पैराग्राफ 11 से जुड़ी पहली तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बहन ने अपनी भाषा में यानी अमेरिनियन भाषा में बाइबल को कसकर पकड़ा हुआ है और वो मुस्कुरा रही है, और दूसरी तस्वीर में रोमानी भाषा बोलने वाली एक बहन और उनकी बेटी अधिवेशन में बैठे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। चित्र शीर्षक, बाईं तरफ 160 से भी ज्यादा अमेरिंडियन भाषाएं, दाईं तरफ 20 से भी ज्यादा रोमानी भाषाएं। पैराग्राफ 12, सवाल, यहोवा का संगठन और किस तरह लोगों की मदद करता है? खुशखबरी को दूर दूर तक पहुंचाने के अलावा यहोवा का संगठन राहत काम भी करता है। जब भी कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है तो हजारों भाई बहन जरूरतमंद भाई बहनों की मदद करते हैं। हमारा संगठन जल्द से जल्द उपासना की जगहों को भी तैयार करता है ताकि लोग इकट्ठा होकर यहोवा के बारे में सीख सकें और उसका प्यार महसूस कर सकें। हमारा महायाजक आपकी मदद कर सकता है। पैराग्राफ 13, सवाल, यीशु किन तरीकों से हमारी मदद करता है? यीशु अच्छा चरवाहा है और वो हम में से हर एक का ख्याल रखता है ताकि यहोवा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत बना रहे। कभी कभी हम इतना निराश हो जाते हैं कि हम टिमटिमाती बाती या कुचले हुए नरकट की तरह महसूस करते हैं। हो सकता है हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाए, हम कोई गलती या पाप कर बैठे, या फिर किसी भाई या बहन के साथ हमारी अनबन हो जाए। ऐसे में शायद हम बस अपनी समस्या के बारे में ही सोचते रहें और भविष्य के लिए हमारे पास जो आशा है उस पर ध्यान ही ना दें। लेकिन याद रखिए कि यीशु आपसे हमदर्दी रखता है। वो आपकी तकलीफ जानता है और उसे पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो जरूर आपकी मदद करेगा। जैसे जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो पवित्र शक्ति देकर वो आप में दम भर सकता है। इसके अलावा वो आदमियों के रूप में तोहफों यानी प्राचीनों के जरिए और दूसरे भाई बहनों के जरिए आपको सहारा दे सकता है और आपकी हिम्मत बंधा सकता है। इफिसियों 4:8। पैराग्राफ 14, सवाल, जब हम निराश महसूस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप कुचले हुए महसूस कर रहे हैं और टिमटिमाती बाती की तरह आपका जोश कम होने लगा है तो याद रखिए कि यीशु हमारा महायाजक है। यहोवा ने उसे धरती पर सिर्फ फिरौती देने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए भी भेजा था कि वो हम इंसानों की तकलीफें अच्छी तरह समझ सके। तो जब हम अपनी किसी कमजोरी या पाप की वजह से निराश हो जाते हैं तो हमें याद रखना है कि यीशु हमारी मदद करने के लिए तैयार है और वो सही वक्त पर ऐसा करेगा। इब्रानियों 4:15-16। पैराग्राफ 15, सवाल, मंडली में वापस लौट आने में एक भाई की कैसे मदद की गई? यहोवा की जो भेड़ें उससे दूर चली जाती हैं, यीशु उन्हें ढूंढने में और उनकी मदद करने में भी अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। जरा भाई स्टेफानो के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। उन्हें मंडली से निकाल दिया गया था, लेकिन 12 साल बाद उन्होंने सोचा कि वो एक सभा में जाएंगे। वो बताते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं सभा में गया। मैं दोबारा यहोवा के परिवार के साथ मिलकर उसकी सेवा करना चाहता था। जो प्राचीन मुझसे मिलने आए थे उन्होंने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी मुझे लगता था कि मैं कितना गया गुजरा इंसान हूँ और मैं हिम्मत हारने लगता था। लेकिन प्राचीनों ने मुझे याद दिलाया कि यहोवा और यीशु चाहते हैं कि मैं कोशिश करता रहूं। जब मुझे बहाल किया गया तो पूरी मंडली ने मेरा और मेरे परिवार का दिल से स्वागत किया। आगे चलकर मेरी पत्नी ने भी बाइबल अध्ययन शुरू किया और आज हमारा पूरा परिवार मिलकर यहोवा की सेवा कर रहा है। जरा सोचिए, जब हमारा महायाजक यीशु ये देखता है कि पश्चाताप करने वालों की किस तरह मदद की जा रही है तो उसे कितनी खुशी होती होगी। पैराग्राफ 16, सवाल, आप क्यों एहसानमंद हैं कि यहोवा ने हमारे लिए ऐसा महायाजक चुना है जो हमसे हमदर्दी रखता है? जब यीशु धरती पर था तो उससे लोगों का दुख देखा नहीं गया और उसने तुरंत उनकी मदद की। आज हम भी यकीन रख सकते हैं कि जरूरत की घड़ी में वो हमारी भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, नई दुनिया में भी वो वफादार लोगों की मदद करेगा और पाप और अपरिपूर्णता से जो भी नुकसान हुए हैं उन्हें ठीक कर देगा। हम यहोवा के कितने एहसानमंद हैं कि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि अपने बेटे को हमारा महायाजक चुना, ऐसा महायाजक जो हमसे हमदर्दी रखता है। आपका जवाब क्या होगा? धरती पर आने की वजह से यीशु किस तरह एक अच्छा महायाजक बन पाया? यीशु ने यशाया 42:3 में लिखी बात कैसे पूरी की? हमारा महायाजक आज कैसे हमारी मदद करता है। गीत 13, मसीह हमारा आदर्श। लेख समाप्त।